इस विशेष गहन चर्चा में स्वागत है। आज हम गायत्री तीर्थ शांति कुंज के मूल दर्शन पर बात कर रहे हैं, उसके क्या उद्देश्य हैं और वो खास माहौल कैसा है वहां का। ये सारी जानकारी श्रोता ने जो दस्तावेज भेजा है एम एंड वातावरण पीडीएफ, उसी पर आधारित है।
जी, और हमारा इरादा यही है कि गुरु सत्ता की जो दृष्टि है, शांति कुंज का जो एक अनोखा सा माहौल है और जो वहां रहने वालों के लिए एक जीवन शैली तय की गई है, उसकी जरूरी बातें निकालें।
हाँ, ये जो स्रोत सामग्री है ये शांति कुंज के क्यों और कैसे पे ही फोकस करती है, मतलब इसका मकसद क्या है, ये कैसे काम करता है। तो ठीक है, फिर इसे खोलकर देखते हैं जरा। सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि ये गुरु सत्ता है कौन जिनका इतना जिक्र है। स्रोत उन्हें सिर्फ कोई संत या चमत्कारी व्यक्ति बता के नहीं छोड़ता।
नहीं, बिल्कुल नहीं,
बल्कि वो एक ऐसे इंसान की तरह सामने आते हैं जो दूसरों के दुख दर्द से बहुत गहरे जुड़े हुए हैं, जिनके अंदर एक रूहानी आग सी जलती है।
हाँ,
देखिए, दस्तावेज में एक जगह लिखा भी है, वबंग 68.5.5 से है ये। वो कहते हैं, हमारी कितनी रातें सिसकते बीती हैं, कितने बार हम बालक की तरह बिलक बिलक कर फूट फूट कर रोए हैं, इससे कोई कहां जानता है।
ये तो बहुत मार्मिक है।
आगे कहते हैं, लोग हमें संत सिद्ध ज्ञानी मानते हैं, पर किसने हमारा अंतकरण खोलकर पढ़ा समझा है। कोई उसे देख सका होता तो उसे मानवीय व्यथा वेदना की करुण कराह से हाहाकार करती एक उद्विग्न आत्मा इस हड्डियों के ढांचे में बैठी बिलखती दिखाई पड़ती।
उफ, मतलब वो खुद को चमत्कारी कहलाने से बच रहे हैं।
हाँ, कमाल की बात है, वो खुद को ईश्वर का हिस्सा मानते हैं, राम का वानर, कृष्ण का ग्वाल बाल। वो चाहते हैं कि लोग उन्हें इस रूप में जाने, एक ऐसे इंसान के तौर पर जिनके अंदर इंसानियत का दर्द है, न कि सिर्फ सिद्धियों वाला कोई व्यक्ति।
और जो बात यहाँ ध्यान देने वाली है वो यही है कि जोर बाहरी सिद्धियों या क्या कहते हैं चमत्कारों पर है ही नहीं।
बिल्कुल,
जोर है अंदरूनी बदलाव पर और उस मानवीय पीड़ा के एहसास पर जिससे शायद हर कोई कहीं ना कहीं जुड़ सकता है। स्रोत के हिसाब से उनकी पहचान अलौकिक कारनामों से नहीं बल्कि गहरी मानवीय करुणा से है, उस आंतरिक संघर्ष से है।
सही।
और ये बात उन्हें सिर्फ एक पूजनीय मूर्ति नहीं बनाती बल्कि एक ऐसा गाइड बनाती है जिनसे प्रेरणा ली जा सके, क्योंकि उनका अपना जीवन ही एक मैसेज है। अगर इसे उनके बड़े मकसद से जोड़ें तो साफ है कि उनका लक्ष्य सिर्फ फॉलोअर बनाना नहीं है। वो चाहते हैं लोग अपने अंदर की मानवीय संवेदना जगाएं, दूसरों के दुख के लिए कुछ करें। ये अंदर के अनुभव पर आधारित बदलाव की बात है।
हाँ, ये पहलू वाकई बहुत अहम है कि कैसे मानवीय संवेदना को ही आध्यात्मिकता के केंद्र में रखा गया है।
अच्छा, अब अगर हम शांति कुंज के मूल उद्देश्यों की तरफ बढ़ें, जैसा स्रोत में बताया है,
बिल्कुल,
तो सबसे पहला और सबसे जरूरी मकसद क्या है?
गुरु सत्ता के जीवन से सीखना। ये सिर्फ उनके चमत्कारों से प्रभावित होना नहीं है बल्कि उनके जीने का तरीका, उनके विचार, उनको समझना और अपनाना है।
सही।
इसके साथ ही बड़े लक्ष्य भी हैं, जैसे मनुष्यों में देवत्व का उदय, मतलब इंसान को बेहतर बनाना, और धरती पर स्वर्ग का अवतरण, यानी दुनिया को बेहतर बनाना।
बड़े लक्ष्य हैं ये तो।
और ये काम अलग अलग लेवल पर होता है, व्यक्ति निर्माण, फिर परिवार निर्माण और फिर समाज निर्माण।
हाँ, एक के बाद एक।
और इन सब के लिए जरूरी क्या है? स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन और सभ्य समाज।
ये तो आधार हो गए।
हाँ, और एक बहुत बड़ी दृष्टि भी है, वसुधैव कुटुंबकम, सारी दुनिया एक परिवार है।
जी।
और इसी से जुड़ा है एकता का लक्ष्य, एक राष्ट्र, एक भाषा, एक धर्म, एक शासन, जहां लिंग, जाति या वर्ग का कोई भेदभाव ना हो। स्रोत कुछ नारों को भी खास तौर पर बताता है, जैसे हम बदलेंगे युग बदलेगा।
हाँ, ये तो बहुत सुना है।
और प्यार प्यार प्यार, यही हमारा मंत्र है। आत्मीयता, ममता, स्नेह और श्रद्धा, यही हमारी उपासना है। और आत्मीयता का विस्तार ही अध्यात्म है।
ये सब बहुत सकारात्मक बातें हैं।
एक और जरूरी बात है, गुरु सत्ता को उनके विचारों और साहित्य में खोजना है, सिर्फ व्यक्ति पूजा नहीं करनी।
सही, विचारों पर जोर है,
उनकी शिक्षाओं पर चलना ही मुख्य है। श्रोत साफ कहता है कि गायत्री मंत्र की दीक्षा लेना असल में गुरु सत्ता के जीवन जैसा जीने का संकल्प लेना है।
अच्छा।
यानी उन खास व्रतों और अनुशासनों को अपनाने का प्रण लेना है जो दीक्षा के साथ आते हैं।
इसे अगर हम व्यापक संदर्भ में देखें तो ये उद्देश्य व्यक्तिगत बेहतरी और सामाजिक बदलाव का एक पूरा नक्शा सा पेश करते हैं।
हाँ, एक ब्लूप्रिंट जैसा।
बिल्कुल, ये सिर्फ अलग अलग अच्छी बातें नहीं है बल्कि एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। कैसे व्यक्ति का सुधार, मतलब स्वस्थ शरीर, साफ मन, समाज के बड़े लक्ष्यों से जुड़ता है, जैसे सभ्य समाज, एकता, विश्व बंधुत्व, ये इसमें साफ दिखता है। ये सिर्फ अपनी मुक्ति या शांति की बात नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया को बेहतर बनाने का नजरिया है।
सही।
और जहाँ तक दीक्षा या शिष्य बनने की बात है, स्रोत के मुताबिक ये कोई एक दिन की रस्म नहीं है।
नहीं,
ये एक जीवन भर की प्रतिबद्धता है, गुरु सत्ता के विचारों को जीना, उनके बताए रास्ते पर चलना। वो व्रत जिनका जिक्र है, वो असल में जीवन जीने के नियम है, अनुशासन है, जिन्हें अपनाने का संकल्प ही दीक्षा है।
मतलब ये सिर्फ इच्छाएं नहीं है?
नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक सक्रिय कर्म आधारित ब्लूप्रिंट है समाज बदलने का, जिसकी शुरुआत खुद से होती है।
एक राष्ट्र, एक भाषा, एक धर्म वाला लक्ष्य, ये सुनने में तो बहुत बड़ा लगता है। क्या स्रोत इस बारे में कुछ और बताता है कि इसे हासिल कैसे किया जाएगा, या ये सिर्फ एक आदर्श है?
स्रोत इस पर बहुत विस्तार से तो नहीं जाता कि ये एकता कैसे हासिल होगी, लेकिन जोर इस बात पर है कि मानवीय एकता और वसुधैव कुटुंबकम का भाव ही असली धर्म है।
अच्छा।
जो सभी बाहरी भेदों से ऊपर है। शायद लक्ष्य एकरूपता थोपना नहीं, बल्कि अंदर की एकता और आपसी प्रेम को बढ़ावा देना है, जिससे बाहरी भेद अपने आप कमजोर पड़ जाएं। भाषा या शासन की एकता शायद उस अंदरूनी एकता का नतीजा मानी गई हो, पर हाँ, स्रोत इसे एक आदर्श के रूप में ज्यादा प्रस्तुत करता है, न कि किसी राजनीतिक प्रोग्राम की तरह। मुख्य जोर हमेशा व्यक्तिगत और नैतिक बदलाव पर ही रहता है।
ठीक है, ये स्पष्टीकरण जरूरी था। अच्छा, तो उद्देश्यों के बाद अब उस जगह की बात करते हैं जहाँ ये सब होता है, शांति कुंज।
जी।
स्रोत इसके माहौल को अद्वितीय कहता है। क्यों? पहली बात तो इसकी जगह ही खास है, हरिद्वार में, गंगा किनारे, हिमालय की गोद में।
हाँ, लोकेशन तो प्राइम है।
इसे सप्तऋषियों की तपोभूमि माना जाता है।
जी।
ऋषि विश्वामित्र की तपस्थली, मतलब इसका एक गहरा ऐतिहासिक और आध्यात्मिक कनेक्शन है।
जी।
दूसरी बात, यहाँ लगातार आध्यात्मिक ऊर्जा पैदा करने वाले काम होते रहते हैं। एक अखंड दीप है जो हमेशा जलता रहता है।
हाँ, मैंने भी सुना है उसके बारे में।
2400 घंटे मंत्र जप चलता है और रोज यज्ञ होते हैं। स्रोत एक सीधी महसूस होने वाली ऊर्जा की बात करता है। यज्ञ से निकली ऊर्जा, गायत्री मंत्र से चार्ज हुआ माहौल, और साथ में गुरु सत्ता का स्नेह और प्रेरणा।
अच्छा, यानी एक वाइब है वहाँ की।
हाँ, बिल्कुल। एक जगह लिखा है कि यहाँ आने वालों का शरीर का कण कण, मन और अंतःकरण इस ऊर्जा से जैसे चार्ज हो जाता है, झंकृत होता है।
वाह।
इसे धरती पर एक अनोखी जगह बताया गया है, जहाँ माना जाता है कि हिमालय के ऋषि मुनि सूक्ष्म रूप में, मतलब दिखाई न देने वाले रूप में, हमेशा मौजूद रहते हैं।
ओ, ये तो दिलचस्प है।
और ये भी बताया गया है कि यहाँ करोड़ों बार गायत्री मंत्र का जप और यज्ञ की आहुतियाँ दी जा चुकी हैं। ये सब मिलकर उस खास माहौल को बनाते हैं।
ये समझना जरूरी है कि स्रोत के अनुसार ये माहौल क्यों इतना अहम है। ये सिर्फ एक सुंदर या पवित्र जगह नहीं है,
नहीं,
बल्कि सोच समझकर बनाया गया आध्यात्मिक इकोसिस्टम है। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये उन बदलावों में मदद करे जिनकी बात हमने पहले की, व्यक्तिगत और सामाजिक।
अच्छा।
जगह का अपना महत्व है। हिमालय और गंगा भारतीय सोच में वैसे ही आध्यात्मिक ऊर्जा के स्रोत माने जाते हैं। फिर यहाँ लगातार होने वाले अनुष्ठान, जप, यज्ञ, अखंड दीप और गुरु सत्ता की उपस्थिति, चाहे शरीर में हो या विचारों में, इस माहौल को और शक्तिशाली बनाते हैं। जहाँ तक सूक्ष्म रूप में देवात्मा हिमालय की ऋषि सत्ताएं का जिक्र है, इसका मतलब है कि माना जाता है कि इस जगह पर दिव्य शक्तियां या उन्नत आत्माएं अभी भी मौजूद हैं और वातावरण को प्रभावित करती हैं।
यानी ये सिर्फ ऐतिहासिक स्थल नहीं है?
नहीं, स्रोत का मानना है कि यहाँ अब भी दिव्य चेतनाएं सक्रिय हैं, जो साधना में मदद करती हैं। तो ये जगह सिर्फ बैकग्राउंड नहीं है, बल्कि साधना का एक एक्टिव टूल बन जाती है, जहाँ माहौल खुद व्यक्ति को बदलने में मदद करता है।
और इसी माहौल में ढलने के लिए खास तरह की जीवन शैली अपनाने पर जोर दिया जाता है। स्रोत इसे ऋषि प्रणीत दिनचर्या कहता है।
जी, ऋषियों द्वारा बताई गई।
हाँ, चलिए इसके कुछ मुख्य हिस्सों पर नजर डालते हैं। दिन की शुरुआत सुबह जल्दी उठने से होती है। आत्मबोध, जागरण, मतलब खुद को जानना, प्रार्थना, ईश्वर के प्रति आभार जताना, और दिन भर क्या करना है उसकी प्लानिंग करना।
सुबह की शुरुआत ही फोकस्ड है।
बिल्कुल। फिर आते हैं आध्यात्मिक अभ्यास। प्राणायाम है, जिसमें सिर्फ सांस लेना छोड़ना नहीं, बल्कि ये भावना की जाती है कि हम ब्रह्मांड की अच्छी ऊर्जा, प्राण, अंदर ले रहे हैं।
अच्छा।
उसे रोक रहे हैं और अंदर की बुराइयों को बाहर फेंक रहे हैं।
ये गहरा मतलब है प्राणायाम का।
हाँ, ध्यान का अभ्यास है जिसमें मैं कौन हूं जैसे सवालों पर सोचा जाता है, और गायत्री मंत्र के जरिए अपने तीनों शरीरों और पांचों कोशों को जलाने की बात कही गई है।
स्थूल, सूक्ष्म, कारण शरीर और पंचकोश। जी।
साथ ही नियमित जप और यज्ञ भी इस साधना का हिस्सा है।
मतलब साधना का पूरा पैकेज है।
फिर शरीर का ध्यान भी रखा जाता है। व्यायाम, आसन, प्राणायाम तो है ही, साथ में प्रज्ञा योग, मुद्राएं और बंद भी हैं।
प्रज्ञा योग ये क्या है?
स्रोत ज्यादा डिटेल नहीं देता, पर शायद योग का कोई खास प्रकार होगा जो प्रज्ञा यानी विवेक बढ़ाने पर केंद्रित हो।
अच्छा, हो सकता है।
खाने में अंकुरित अनाज पर जोर है, जिसे प्रकृति की ओर लौटना कहा गया है, मतलब सादा और पौष्टिक भोजन।
नेचुरल लिविंग।
फिर है बौद्धिक और भावनात्मक विकास। इसके लिए सत्संग है, प्रवचन सुनना, ऑडियो वीडियो देखना या किताबें पढ़ना,
ज्ञान लेना
और स्वाध्याय यानी खुद पढ़ना, खासकर महापुरुषों के जीवन और विचारों को। साथ ही आत्मनिरीक्षण करना, सोचना विचारना,
मनन चिंतन।
सामुदायिक जीवन और सेवा भी बहुत जरूरी है। सहभोज मतलब सब लोग मिलकर बिना किसी भेदभाव के भोजन करते हैं।
समानता का भाव।
और श्रमदान यानी अपनी इच्छा से आश्रम के कामों में हाथ बटाना। इसे अहंकार को कम करने का एक तरीका माना जाता है।
सेवा भाव और विनम्रता।
बनने का संकल्प लेना।
सिर्फ पूजा नहीं, संकल्प भी।
फिर है नाद योग। ध्यान लगाकर अंदरूनी आवाज या ओम की ध्वनि सुनने का अभ्यास।
अच्छा, ये तो ध्यान की एक विधि है।
और रात को सोने से पहले प्रार्थना और तत्वबोध, जिसमें पूरे दिन के कामों का विश्लेषण करना, गलतियों के लिए माफी मांगना, अगले दिन की योजना बनाना और खुद को बेहतर बनाने का संकल्प लेना शामिल है।
ये तो काफी मतलब डिटेल्ड कार्यक्रम लगता है।
बिल्कुल। और इसे अगर हम समेट कर देखें तो ये एक ऐसी जीवन शैली है जो दिन के हर हिस्से को शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक एक साथ बुनती है।
हाँ, सब कुछ जुड़ा हुआ है।
ये जीवन को टुकड़ों में नहीं देखती, बल्कि एक संपूर्ण इकाई मानती है। इसमें लगातार खुद पर नजर रखने और खुद को सुधारने पर बहुत ज्यादा जोर है। जैसे रोज रात को अपने दिन का विश्लेषण करना, आत्म समीक्षा, और बेहतर बनने का संकल्प लेना, आत्म सुधार।
हाँ, ये रोज की प्रैक्टिस है। इसका असली मकसद सिर्फ अपनी शांति पाना नहीं है, बल्कि एक ऐसा जीवन जीना है जो सार्थक हो, समाज के लिए उपयोगी हो, लोक कल्याण, लोक मंगल।
बिल्कुल।
जैसा स्रोत में कहा गया है, जीवन यानी समय का सही इस्तेमाल करके दूसरों की भलाई के लिए जीना। ये पूरी दिनचर्या उसी बड़े लक्ष्य तक पहुंचने का एक व्यवहारिक नक्शा है।
सही है।
जरूरी बात ये है कि ये जीवन शैली सिर्फ अनुशासन नहीं है, बल्कि समय और चेतना को री इंजीनियर करने का एक तरीका है, ताकि हर पल आध्यात्मिक लक्ष्य से जुड़ा रहे।
री इंजीनियर करना, ये अच्छा शब्द है। अच्छा, इस जीवन शैली और उद्देश्यों को समझने के लिए स्रोत कुछ मुख्य सिद्धांत और ढांचे भी बताता है।
जी, कुछ फ्रेमवर्क्स हैं।
हाँ, इनको जानना भी जरूरी है। पहला है सीखने की प्रक्रिया, जिसके तीन कदम हैं। सीखना यानी जानना।
पहला स्टेप।
मानना यानी दिल से स्वीकार करना।
दूसरा स्टेप।
और फिर अभ्यास संस्कार यानी उसे अपनी आदत बना लेना, जीवन का हिस्सा बना लेना।
तीसरा और सबसे जरूरी।
और सीखने में मदद क्या करता है? जिज्ञासा, मनोयोग, ध्यान लगाकर सीखना और प्रयास।
इनर फैक्टर्स।
हाँ, साथ ही बाहरी मदद भी जरूरी है। प्रेरणा, प्रोत्साहन, सही मार्गदर्शन, स्नेह और सही माहौल।
एक्सटर्नल सपोर्ट।
फिर एक चार सूत्री साधना बताई गई है। स्वाध्याय, संयम, सेवा, इनके साथ चार गुण भी जरूरी हैं। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी।
साधना और गुण।
चार तरह के संयम का जिक्र है। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, पैसे का सही इस्तेमाल, समय संयम और विचार संयम।
ये तो बहुत प्रैक्टिकल है।
और चार आत्माभ्यास हैं, आत्म समीक्षा, आत्म सुधार, आत्मनिर्माण और आत्म विकास,
खुद पर काम करना।
इसके अलावा तीन आधार बताए गए हैं, उपासना, ईश्वर से जुड़ना, भक्ति, साधना, खुद को तपाना, अभ्यास करना।
दूसरा।
और आराधना, जीवन को सेवामय बनाना, कर्मयोग।
तीसरा।
इन्हें कई और चीजों से जोड़ा गया है, जैसे ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, भावना विचार क्रिया, श्रद्धा प्रज्ञा निष्ठा, गुण कर्म स्वभाव और चिंतन चरित्र व्यवहार। मतलब ये तीन आधार जीवन के हर पहलू को समेट लेते हैं।
हाँ, ये तो बहुत व्यापक है।
आखिर में तीन चीजों को छोड़ने पर जोर है, लोभ, मोह, अहंकार।
आसानी,
या दूसरे शब्दों में वासना, तृष्णा, अहंता, या फिर पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा, लोकेष्णा, ये सब मोह और अहंकार के ही रूप हैं।
इसका एक महत्वपूर्ण पहलू ये है कि ये सिर्फ अलग अलग लिस्ट्स नहीं है।
नहीं,
ये सब आपस में जुड़े हुए फ्रेमवर्क्स हैं जो उस दर्शन को जीने का तरीका बताते हैं।
बिल्कुल,
ये आत्म अनुशासन, खुद को बेहतर बनाने और सेवा करने का एक स्ट्रक्चर्ड रास्ता दिखाते हैं और साथ ही बुरी आदतों या विचारों को छोड़ने की बात करते हैं। ये जो परत दर परत संरचना है, ये अभ्यास शुरू करने के लिए कई रास्ते और आयाम देती है। कोई इंसान अपनी समझ और क्षमता के हिसाब से इनमें से किसी भी एक बिंदु से शुरू कर सकता है।
अच्छा।
और धीरे धीरे बाकी चीजों को भी अपने जीवन में शामिल कर सकता है। ये सिर्फ नियम नहीं बल्कि एक तरह का आध्यात्मिक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो व्यक्ति को आत्म सुधार और सेवा के रास्ते पर व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाता है।
तो इस सब का क्या मतलब है? अगर हम सारी बातों को समेटें तो शांति कुंज व्यक्तिगत और सामाजिक बदलाव के लिए एक बहुत बड़ा और गहरा नजरिया पेश करता है।
जी हाँ, एक कॉम्प्रिहेंसिव विजन है।
ये गुरु सत्ता की शिक्षाओं, एक खास तरह के आध्यात्मिक माहौल और एक तयशुदा रोजमर्रा के अभ्यासों पर टिका है।
बिल्कुल,
ये सब मिलके एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने का रास्ता दिखाते हैं जो कुछ साफ सिद्धांतों पर आधारित हो और जिसे खास तरह का माहौल मदद करे।
और अब एक आखिरी सवाल जो मन में उठता है, जो सीधे स्रोत से ही निकलता है पर हमें थोड़ा आगे सोचने को मजबूर करता है। श्रोत इस बात पर बहुत ज्यादा जोर देता है कि इन शिक्षाओं को सिर्फ जानना काफी नहीं है बल्कि उन्हें स्वीकारना, मानना और अभ्यास में लाना, अभ्यास संस्कार जरूरी है।
हाँ, ये बात बार बार आई है।
अब ये जो इतनी विस्तृत और अनुशासित जीवन शैली बताई गई है उसे देखते हुए आज के इस आधुनिक भागदौड़ वाले जीवन में किसी व्यक्ति के लिए इस पूरी जीवन शैली को जस का तस अपनाने की कोशिश में सबसे बड़ी चुनौती क्या हो सकती है?
ये सोचने वाली बात है।
और दूसरी तरफ अगर कोई ऐसा कर पाता है तो उसका सबसे बड़ा इनाम या हासिल क्या हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर श्रोता खुद सोच सकते हैं।
बिल्कुल, इस गहन चर्चा में हमारे साथ रहने के लिए श्रोता का धन्यवाद।